فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اس شخص کا شمار ہمارے محبین میں نہیں ہے جو ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے، اگر کوئی نیکی کی ہو تو خدا کا شکر ادا کرے اور مزید نیکی کے لیے توفیق طلب کرے، اور اگر کوئی برائی کی ہو تو خدا سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اور یہ وعدہ کرے کہ پھر سے اس کی طرف، اس برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایک اور صبح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح تو ویسے خدا کی ہے لیکن ہم لوگ اس میں حاضر ہیں، اور پروگرام صبح زندگی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں، اور جیسے حسن نے کہا کہ خوبصورت سی صبح اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی، ایک اور نعمت، ایک اور خوبصورت دن ہماری خدمت میں جو ہے آ پہنچ گیا ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دن کو کیسے استعمال کرتے ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے۔
اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساری، یعنی آج کا پورا دن اور کل جو چھٹی ہے، ہم لوگ نہیں ہوں گے تو کل کا پورا دن بھی بہت ہی زبردست طریقے سے آپ گزارے ہیں اور بہت ہی مفید ہو آپ لوگوں کے لیے۔
حضر اگر صبح سویرے انسان ایک تو صبح نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے یہ ٹھان لے کہ آج جو ہے میں نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اور جیسے میں نے کل کہا کہ ہم لوگ پورا دن کام کرتے ہیں اپنے لیے، ایک آدھ کام، ایک آدھ منٹ، پانچ منٹ، دس منٹ ہم کبھی نکالیں کسی دوسرے شخص کے لیے۔ ہاں مجبوراً اور بات ہے کہ جی کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے کہ یار یہ مجھے تھوڑی سی اس میں جو ہے میری مدد کر دو، وہ علیحدہ بات۔ آپ خود کبھی ایسا کیے کہ آپ دیکھیں کہ جی مثال کے طور پہ ایک جو ہے شخص باہر روڈ کے کنارے جو ہے وہ جو پٹی سے ہوتی ہے، سبز پٹی جہاں پر وہ پودے شودے لگائے ہوتے ہیں، وہاں وہ تو اس کو جو پودوں کو پانی دے رہا ہے، تو ہوا کبھی آپ رک کے گاڑی سے اتر کے پانچ منٹ جو ہے اس سے کہیں کہ یار تم بیٹھو میں جو ہے پانی دیتا ہوں پودوں کو؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے،
بالکل
اس کو میں نے کل بھی کہا، کوشش کریں کہ ایک آدھ منٹ، پانچ منٹ جو ہیں دوسروں کے لیے بھی اس زندگی میں
نکالیں۔ ایک چیز یہاں پہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، خصوصاً مذہبی جگہوں پر یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب وہ لوگ جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں،
بالکل
اماموں کے روزے ہوتے ہیں، محرم جو ہوتا ہے وہاں پر، تو لوگ خود آگے بڑھ کے وہ جھاڑو ان سے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ یعنی توفیق مل جائے کہ ہم بھی تھوڑی دیر جھاڑو دے دیں امام کے صحن میں۔
بالکل،
تو اس میں جو چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہی چیز اگر ہم لوگ اپنے شہر میں اپنا لیں، آج سے ہم نے تقریباً اب تو ایک مہینہ ہو گیا ہم نے بتایا تھا کہ کچھ یہاں پہ جلوس جو نکلتے ہیں وہ خود ان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ صفائی کرتے ہیں اپنے، جو جلوس کا راستہ ہے اس کے راستے میں نہیں جاتے،
بالکل جہاں جہاں سے جلوس گزر رہا ہے وہیں سے صفائی کر لیں، تو میرے خیال میں کتنے جلوس یہاں پر نکلتے ہیں اور کتنا جو ہے یہاں پر آزاداری کا بہرحال ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور محرم کے آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کو پہلے بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے پروگرام بنایا کہ جی وہ اپنے جو علاقہ ہے اس کو صاف رکھیں گے۔
اور اس میں یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اچھائی جس سے بھی ہو ضرور سیکھو، جس سے بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف نیک آدمی سے سیکھنا، بلکہ اگر کوئی بھی اچھائی کر رہا ہے اس سے ضرور سیکھو۔ تو یہ بہت ہی
امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کو جو شخص آپ کو ایک لفظ بھی سکھاتا ہے وہ آپ کو استاد ہے، تو بالکل بہرحال سیکھنا چاہیے، ہر کسی سے سیکھنا چاہیے، اچھی باتیں خاص طور پہ سیکھنی چاہیے، بری باتیں نہیں سیکھنی چاہیے۔ اتفاقا پروگرام سے پہلے حسن کے ساتھ یہی بات ہو رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ مقناطیس کی طرف جو ہے ہم لوگ خاص طور پہ ہماری جوان نسل جو ہے وہ مقناطیس کی طرف جو ہے وہ جو بری عادات جو ہیں، البتہ خیر یوں کہوں تو بہتر رہے گا کہ پتہ نہیں ہوتا چیزوں کے بارے میں، اکثر لوگوں کو ایسی چیزیں آتی ہیں بازار میں اور فوراً جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل جی پہنچ جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا سوچیں اس سے پہلے کہ بھائی یار اس کا نقصان کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے بعد
اس کے بارے میں یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت بتائیں گے۔ آج آپ عزیز ناظرین کو چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، یعنی آپ چل کے ایک پروگرام دیکھیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا مبشر صاحب نے ہم لوگوں کے لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کا پاک سیٹ پہ شاید کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں نشر ہونے میں ہمارے پروگرام کی، تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اپنے ہم ساتھیوں کو بتا دیں گے کہ جلد از جلد اس کا جائزہ لیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف اعجاز حسین صاحب نے ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست پیغام بھیجا ہے کہ کیا آپ لوگ اچھی اچھی باتیں کر کے ہمارے استاد بننا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی ایسے خیالات ہیں؟
نہیں، کہ انہیں کہے کہ اعجاز حسین کے ہوتے ہوئے کس کا استاد بن سکتا ہے؟
نہیں، بہرحال انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کی ایسی کوئی یعنی خواہش نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسروں کا پیغام، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماموں کا پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، تو اس سلسلے میں شاید ایک کہہ سکتے ہیں کہ पोस्टमैन का काम हम लोग कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात की हसन, बिल्कुल ठीक, पैगाम पहुंचाने वाले हो सकते हैं हम लोग, लेकिन जो है उस्ताद की जो है अभी वो हिम्मत नहीं हुआ है अभी। बहरहाल बहरहाल हमारे साथ जो है वक्त हुआ हमारे गुफ्तगू के सेगमेंट का, और हमारे साथ डॉक्टर रिजवाना हुसैन स्टूडियो में मौजूद हैं। और जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि आज का दिन जो है हमारा ग़िज़ाइयत तग़ज़िये के बारे में होता है, तो डॉक्टर साहब से आज जो है हम बात करेंगे इसी मौजू पर। और मौजू हमारा इंशाल्लाह होगा कि जो गोश्त होता है और जो सफ़ेद गोश्त वाइट मीट जिसको कहा जाता है, कि दोनों के क्या नुकसान हैं, क्या फ़वाद हैं, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात कीजिएगी। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज़ करता हूँ आपको।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में और जो है इस मौजू पर आपने गुफ्तगू करने का।
थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया।
डॉक्टर साहब आप हमारा जो जैसे कि मौजू आपने कहा कि आप जो है बात करेंगी कि जो गोश्त है और दूसरी तरफ जो हमारे पास सफ़ेद गोश्त जिसमें मछली मुर्गी आ जाती है, दूसरी तरफ ये जो गोश्त जिसको हम रेड मीट भी कहते हैं, बहरहाल इसमें जो है वो गाय और बकरी और भेड़ वगैरह का जो है गोश्त वगैरह आ जाता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ी बात शुरू करते हैं हम लोग के, जो गोश्त है ये है क्या, मतलब कहाँ से इसकी क्या जो इसके मतलब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है तो है क्या?
पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि रेड मीट यानी लाल गोश्त भी कहा जाता है, इसे क्यों कहते हैं, इसमें एक और ये कौन से जानवर हैं जिनसे हासिल किया जाता है। रेड मीट में हम गोश्त लेते हैं, गाय बकरे का गोश्त, भैंस का गोश्त, भेड़ का गोश्त, और ये है कि इनमें, और अब दूसरी बात आ जाती है कि ये लाल क्यों होता है,
ठीक
है। ये लाल इसलिए होता है कि इसमें एक प्रोटीन है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं,
ठीक है,
जो आयरन के साथ मिलके ऑक्सीजन को जिस्म में लेके जाती है,
ठीक है।
इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। अब तीसरी बात आ जाती है कि इसमें ग़िज़ाइयत के लिहाज से क्या है, तो इसमें ये है कि प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स जिस्म यानी जो बॉडी बिल्डिंग के लिए है उनके लिए तो ठीक
सही है, ठीक है।
वरना अगर आप वैसे इसको देखें तो इसमें प्रोटीन्स आम नॉर्मल डेली लाइफ के लिए भी इतनी नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें,
ठीक है। यानी मतलब अगर एक शख्स जो है रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो प्रोटीन की मिकदार जो उसको मिलनी चाहिए वो उसको उस मिकदार में नहीं मिलेगी, इससे
बिल्कुल नहीं मिलेगी।
अच्छा।
और दूसरी बात,
डॉक्टर साहब दूसरे तो कहा जाता है कि जी गोश्त में बड़ा प्रोटीन है और वो सारे जो यही लगे होते हैं कि जी प्रोटीन प्रोटीन, और
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप इसके फवायद देखें तो ठीक है, इस पे प्रोटीन्स और जैसे मैंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, इसके अलावा भी ग़िज़ाइयत के एतबार से इस सफ़ेद गोश्त से ये बहुत बेहतर
है,
लेकिन अगर आप इसके नुकसान की तरफ देखें तो इसमें चर्बी यानी फैट्स जो है वो 2.6% सफ़ेद गोश्त से ज़्यादा है।
अच्छा,
ठीक है,
ठीक है।
और चर्बी आपको पता है कि ये किसको दावा देती है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है,
ठीक है, दिल की बीमारी
जी बिल्कुल। और ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते दिल की बीमारी, ये बेसिकली मोटापे की तरफ लेके जाती
अच्छा,
है, ठीक है,
सही है।
और मोटापा जो है वो सिर्फ एक कैफियत नहीं है, वो एक दावत है,
सही है।
बहुत सी बहुत बड़ी लिस्ट जो है इसमें फिर बीमारियों की आ जाती है,
सही है।
और लेकिन अगर आप इसके फवायद देखें तो इसमें जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है,
इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जिसको लाइपोइक एसिड कहते हैं वो है,
है।
इसमें बहुत से ऐसे हैं जो ग़िज़ाइयत, लेकिन बात यह है कि आप ये देखें कि ये सब ग़िज़ाइयत अगर आप प्रोटीन्स को और फैट्स को छोड़ दें, ये सब ग़िज़ाइयत आप और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हासिल कर सकते हैं,
ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर जी।
जैसे जिंक है आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, डायरिया के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आपके जिस्म के सारे सिस्टम्स को सही चलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि आप इसमें फैट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, यानी चर्बी को आप इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब गोश्त लेंगे जहां आपको प्रोटीन्स मिलेगी और ये फवायद मिलेंगे वहां आपको ये नुकसानात भी मिलेंगे,
ठीक है। बहरहाल डॉक्टर साहब इसको आगे भी गुफ्तगू आगे भी चलाएंगे हम लोग, अब इसके बाद जो है थोड़ा सा व्हाइट मीट के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या फवायद हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा हम एक वक्फा लेना है, चलते हैं हसन के पास। जी हसन
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, और हमारे साथ ही बता रहे हैं एक ब्रेक लेना है। और बहरहाल नाज़रीन अगर आपको आपका कोई सवाल हो इस सिलसिले में तो आप फेसबुक के ज़रिए हमसे रابطہ बरकरार कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर्स भी हम लोगों ने देते रहते हैं हम लोग यहाँ पे सबटाइटल की शक्ल में, तो ये आप देखते रहिए, आप उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 6:51 और आप मुलायजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी सहर आलमी नेटवर्क से, और नाज़रीन आपकी खिदमत में हम बताते चलें एक दो बहुत मज़ेदार सी चीज़ें, हमने थोड़ी बहुत मुर्तबित हैं हम लोगों के जो हम लोग गुफ्तगू चल रही है उससे और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी और आपको ताज्जुब भी होगा इस पर। चलते हैं खुर्रम के पास, फिलहाल
बहुत
वो अपनी
शुक्रिया
गुफ्तगू
हसन,
जारी।
इंशाल्लाह जो है आप जो चीज़ें लेके आए वो भी हम सुनेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहिबा के पास। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी गुफ्तगू जो डॉक्टर साहिबा से चल रही है वो इस बारे में चल रही है कि कैसे जो गोश्त है और सफ़ेद गोश्त जो है उसके क्या नुकसान है, तो उसके क्या फ़ायदे। डॉक्टर साहब चलते हैं सफ़ेद गोश्त की तरफ।
जी, सफ़ेद गोश्त में हम जिन जिस गोश्त का शुमार करते हैं उसमें मुर्गी का गोश्त
जी
और मछली है, और टर्की का गोश्त भी इसमें शुमार किया
हाँ
जाता है, लेकिन सफ़ेद गोश्त को वाइट मीट यानी लीन मीट कहा जाता है।
ठीक है
ठीक है, इसमें बेशक प्रोटीन्स कम है लेकिन फैट्स का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोश्त में इससे फैट्स तकरीबन 3%, 2.65%
जी जी
ज़्यादा है,
ठीक
और
है
इसमें फैट्स कम है।
कम है ठीक है।
बड़े गोश्त में जो फैट्स है वो सैचुरेटेड फैट्स है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल को दावत देती है
अच्छा
और
ठीक
उसको
है।
बनाती
तो
है,
दो टाइप्स
जबकि
के हमारे पास फैट हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो
अनसैचुरेटेड।
गोश्त में सैचुरेटेड है हमारा
जी,
ठीक
अब इसमें जो है ठीक है सैचुरेटेड है,
ठीक है
लेकिन इसमें उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें फ़वाइद में यही है कि इसके फैट्स बहुत कम है,
ठीक है
प्रोटीन्स भी कम है इसमें। न्यूट्रिशियस लिहाज से अगर आप इसको ये देखें कि इसमें बाकी सारे जिंक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लाइपोइक एसिड, ये सब कुछ उस लिहाज से काफ़ी कम है,
ठीक है
लेकिन फिर भी आप अगर इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस लिहाज से ये बहुत बेहतर है।
ठीक है
ठीक है,
सही
क्योंकि इससे मोटापे का कोई ख़तरा नहीं है।
सही
ठीक
है
है,
ठीक
अगर आप इसको हफ्ते में 2-3 बार लेते हैं।
सही है
ठीक है,
ठीक।
तो
अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पर मैं जल्दी से पूछना चाहूँगा आपसे कि खुद जो गोश्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खाली गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं चर्बी के साथ वाला गोश्त, इसका भी कोई असर होता है।
बिल्कुल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि चर्बी तो सॉलिड फैट्स है। ठीक
सही
है,
है
और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप चर्बी खाएंगे तो आप सिर्फ मोटे हो
ठीक
जाएंगे
है
या फिर आपका वजन बढ़ जाएगा।
सही है
ठीक है, बात ये है कि पहले ज़माने में इसको खाया जाता था,
ठीक
लेकिन
है
पहले के लाइफस्टाइल में और आज के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क
बहुत
है।
फर्क है
अब कोई पैदल सफ़र नहीं
नहीं
करता,
करता
ज़्यादातर लोग अपना काम खुद नहीं करते,
ठीक है
कंप्यूटर है,
जी
लैपटॉप्स हैं,
सब कुछ
आईपैड्स हैं, अब बहुत
बिल्कुल
सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने हमारी हरकत को कम कर दी है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो हम अपनी फैट्स को बर्न नहीं करते, हम
सही
अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करते,
सही है ठीक
इसलिए पहले ज़माने में ये गोश्त खाया जाता था,
है
इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा था कि लोग अपनी कैलोरीज को बर्न करते थे।
ठीक है
ठीक है,
सही है
सफ़र करते थे, पैदल चलते थे, अब लोगों के पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है,
सही
चलने का टाइम नहीं है,
सही ठीक।
तो
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है इख्तिताम पे पहुँच गया गुफ्तगू के सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो में और
बहुत
आपने जो है
शुक्रिया।
अहम नुकात की तरफ हमारे नाज़रीन की तरफ इशारा किया। इंशाल्लाह हम लोग अगले प्रोग्रामों में भी कोशिश करेंगे कि इस इन मौजूआत में मजीद गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया आप जो
बहुत
है तशरीफ लाएँ।
शुक्रिया,
तो अभी हम लोग चलेंगे हसन के पास, देखते हैं हसन क्या हमारे लिए
मैं
पास
बहुत बहुत
लेके आए।
शुक्रिया और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहिबा का। हमारे साथी बताएंगे कि हम LCD के पास जाके बताएं आप लोगों को नई नई चीज़ें, तो मेरे ख्याल में बताना ही है। तो चलते हैं एक बताते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो एक ख़ास किस्म के जो रीच होते हैं उन्हें ग्रे बेयर भी कहा जाता है, और ये खुसूसन शुमाली कनाडा में वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। रशिया में भी उसकी एक किस्म होती है साइबेरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा शुमाली कनाडा में वो दिखाई देते हैं। उनकी ख़ास बात ये है कि ये खाने के एतबार से, माफ़ कीजिएगा वैसे इस पे भी बात हो सकती है, खाने के एतबार से काफ़ी बहरहाल तंदुरुस्त होते हैं। और हर रोज़ यानी आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था यकीन करना कि 58,000 कैलोरी हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं ये जो भालू होते हैं या जो भी रीच आप कह लें। और इनका ये रहता है कि असल इनका खाना जो है वो रहता है सैलमन मछली, जो है ख़ास किस्म की बहुत ही खूबसूरत सी मछली होती है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीर ढूँढने की। और इसके अलावा उनका जो असल खाना जो रहता है वो ये मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त भी वो खा सकते हैं। और एक और चीज़ जो है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बेरीज़ या तो ये जो खुश्क तूत जो होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब चलें तूत की वजह से तो नहीं, ले शहतूत की वजह से नहीं, लेकिन ये जो बाकी गोश्त जो इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उनके बदन में होता है। लेकिन ये चीज़ देखी गई कि ना वो मोटापे का शिकार होते हैं, यानी अपने लिहाज से हम लोग के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, बल्कि उनके अपने जो मेयार है उसके मुताबिक वो मोटापे का शिकार नहीं होते और दिल की बीमारियों में वो मुब्तला नहीं होते हैं। तो इस सिलसिले में डॉक्टर कॉर्बिन जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने तकरीबन गुज़श्ता 2-3 साल से अपना पूरा टाइम वक्फ कर दिया है इसी सिलसिले में कि तहकीक करें और 12 मुख्तलिफ ریچوں پر تحقیق کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 12 ریچ صرف اور صرف دنیا میں صرف واشنگٹن یونیورسٹی میں ہے. اور وہاں پر یہ جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ پورا نظام یہ لوگ اپنا صحیح کرتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ ان کا نظام انہضام جو ہے بہت ہی ایک مضبوط سسٹم ہے اس کا. اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انسولین سے بالکل حساسیت ان کی ختم ہو جاتی ہے. یعنی عام دنوں میں ہوتی ہے لیکن جب سردیوں سے پہلے لوگ بالکل اس موڈ میں ہو جاتے ہیں کہ جا کے سو جائیں کئی مہینے, تو اس میں جو ہے انسولین کی طرف ان کی حساسیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. اصل وجہ یہی بتائی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر کوربن نے کہا ہے کہ اگلے 2 سال وہ اس سلسلے میں تحقیقات انجام دیتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے کہ انسانوں میں وہی کام بظاہر ہوتا ہے, گوشت کا استعمال, یہ سب چیزیں, لیکن کولیسٹرول, دل کی بیماریاں اور سینکڑوں دیگر بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن جب ایک بھالو ایک ریچھ جو ہے یہی استعمال کرتا ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اگلے 2 سال میں شاید کوئی تحقیقات مزید سامنے آئیں. اور ہم لوگ انسانوں سے تو سیکھ نہیں رہے, ہماری بات تو آپ مانیں گے نہیں, کم سے کم ریچوں سے سیکھ لیجئے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت ہے. ایک چیز جو اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور افسوسناک ہے واقعی, اور ہم لوگوں کو عام ڈرنکس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے, اور بچوں کو ہم لوگ بوتلوں میں ان کی یعنی جو دودھ کی جو شیشی ہوتی ہے اس میں ہم لوگ ڈرنکس ڈال کے دے دیتے ہیں مختلف قسم کی. ایک اور بھیانک چیز جو بہت زیادہ اس کا استعمال بڑھ گیا ہے حتیٰ عام لوگوں میں, وہ ہے انرجی ڈرنکس. انرجی ڈرنکس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی مقدار میں, اگر آپ صرف اس کے اوپر پڑھ لیں, عام جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں اس کے اوپر دیکھ لیجئے تو کلو کیلوریز میں اس میں یعنی انرجی موجود ہوتی ہے, نہ کہ اس میں, کہ اس میں پتہ نہیں ہزاروں کلو کیلوریز میں شاید انرجی موجود ہو. اس کے اوپر آپ لوگ ضرور ایک بار نظر ڈال لیا کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ یہ کہ یہ جو انرجی ڈرنکس ہوتی ہیں, کہا جاتا ہے یہ صرف جو ہمارے زبردست طریقے سے اسپورٹس کے جو ماہر ہیں اور وہ بہت ہی پروفیشنل طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, ان کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن حتیٰ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرنکس مناسب نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں جو یعنی شکر جو پائی جاتی ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. کہا جاتا ہے کہ انرجی کا باعث بنتی ہے اور اچانک انسان جو ایک راکٹ کی طرح بالکل کام کرنے لگتا ہے. اور سارے جتنے ایڈورٹائزمنٹس ہیں اسی سلسلے میں وہ لوگ یعنی ان کے بیانات ہیں, لیکن جو چیز دیکھی گئی ہے اس کے بالکل برخلاف ہے. اور جو ہم لوگ یعنی اتنا آرام سے اس کا استعمال ہم لوگ کر لیتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے دل کے بائیں حصے پر حد سے زیادہ پریشر آنے لگتا ہے. اور اس کا سب سے کم یعنی اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پمپ کرتا ہے خون دل, وہ سرے سے یا یعنی اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر آپ نے تھوڑا زیادہ استعمال کر لیا, آپ کو خدا نخواستہ اسپتال تک پہنچنے کی آپ کی نوبت آ جائے. تو اس سلسلے میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, ڈرنکس آپ لوگ واقعی بچیں, یعنی یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. اور یہ کئی محققین نے اس سلسلے میں ایران میں بھی تحقیق کی ہے. ابھی حال میں ہی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 12 مختلف دانشوروں نے بیٹھ کر اس کے اوپر ریسرچ کا ایک یعنی سلسلہ شروع کیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی ہفتے میں جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک تھے انرجی ڈرنکس کے سلسلے میں. انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. فیس بک پیج ہم لوگوں کا موجود ہے, ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کسی نے کچھ اگر لکھا ہے یا نہیں.
بڑی کلاسیکل قسم کی موسیقی تھی جو ابھی آپ نے سنی تھوڑی دیر پہلے, جو مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آنی شروع ہو گئی تھی. ایک بار یہ ہے کہ
صبح کے لیے میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی اس کی رفتار کم تھی.
بالکل, یہ جیسے شام کے ٹائم پہ اگر کسی نے تھوڑا سا ریلیکس ہونا ہوتا ہے
دوپہر کے کھانے کے بعد,
بالکل زبردست
بہترین موقع ہے.
سے جب آپ واپس آ جائیں دوپہر کا کھانا کھائیں اور اس کے بعد یہ لگا دیں تو 3-4 گھنٹے آرام سے آپ سو جائیں.
یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آفس میں بھی لگا دیں نا تو آرام سے سو جائیں وہیں پہ. تو ناظرین, ہم لوگوں کا رابطہ میرے خیال میں ہو گیا ہے دلی اسٹوڈیو سے.
بالکل دلی سے ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر عطیہ نشاط ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا. سلام کرتے ہیں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عطیہ نشاط جی, کچھ میرے خیال سے رابطہ ہو گیا ہمارا. سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو ہے دوبارہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. اور جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی آپ کے ساتھ, یہ جو گوشت وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے ریسٹورانٹس وغیرہ میں, اور یہ بات جو ہے ہمیشہ آدھی رہ جاتی ہے کیونکہ ہمارا رابطہ جو ہے ہمیں اکثر جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے. آپ نے بات کی تھی ریسٹورانٹس میں جو گوشت استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں, تو اسی گفتگو کو جی آپ آگے چلائیں.
جی میں امید کرتی ہوں کہ اس بار یہ موضوع ختم ہو
انشاءاللہ.
دیکھیے آپ نے یہ بہت ہی بہترین موضوع چنا تھا. مجھے بہت یہ اس پہ کس کے بارے میں اکثر بات نہیں ہوتی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ جیسے برگر وغیرہ ہے یا اکثر بچے گھر میں بھی لے آتے ہیں نگیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں چکن نگیٹس اور اس کا استعمال ہوتا ہے اکثر, بہت بڑھ گیا ہے. تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ بہت سی تفشیش میں سامنے آیا ہے کہ اس میں گوشت کا پرسنٹ بہت کم ہوتا ہے یا وہ گوشت ہوتا ہی نہیں ہے, بعض میں تو صرف 2-3% ہی گوشت پایا گیا ہے. تو یہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو یہ صحت کے لیے بہرحال خطرناک ہے اور یہ بہت پرانی ریسرچ ہے 2008 کی. اس کے بعد سے پھر دوبارہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے, کیا پتہ اس کے میں کچھ آگے سدھار ہوا ہو. اب کی کیا کنڈیشن ہے یہ تو نہیں پتا, لیکن یہ ایک چھوٹی بحث ہے, ایک چھوٹا سوال ہے کہ بھائی وہ گوشت کیسا ہے یا وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. بڑا سوال یہ ہے کہ وہ درحقیقت اگر مان لیجئے وہ 100% بھی گوشت ہے, اب اگر ہم ریسرچ کریں اور یہ سامنے آتا ہے کہ نہیں بھائی جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے اپنی وہ کوالٹی کو بہت امپروو کر دیا ہے اور اب وہ بہت اچھا گوشت استعمال کر رہے ہیں, یعنی وہ 100% گوشت ہوتا ہے, پر سوال یہ ہے کہ وہ گوشت بھی کس قدر ہماری صحت کے لیے بہتر ہے.
صحیح.
اب اس پہ میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں یہ جو اپنے گوشت استعمال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے پروسیسڈ میٹ ہوتے ہیں. اچھا پروسیسڈ میٹ ہوتا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی میٹ کی فیکٹریز ہوتی ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ اب جو گوشت کا پروڈکشن ہے یعنی میٹ جو ہے وہ آپ سوچے کہ بڑا بڑا فارم ہوتے ہوں گے اور وہاں پہ گائے اور بکریاں اور چکن وغیرہ بڑے آرام سے ادھر ادھر پھرتے ہوں گے اور وہ پھر ذبح ہوتے ہوں گے اور اس سے ہمیں گوشت حاصل ہوتا ہوگا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کمرشلائزیشن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب انہیں ہم بولتے ہیں کنفائنڈ اینیمل بریڈنگ فیکٹریز, یعنی اس کو باقاعدہ فیکٹری کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں جتنا گوشت کا پروڈکشن ہوتا ہے وہ بھی بالکل پروفیشنل طریقے سے ہوتا ہے, یعنی چھوٹی سی جگہ پہ بہت زیادہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے پہلی بات. دوسری بات جب ایسا کیا جاتا ہے تو ان کو جس قسم کا کھانا دیا جاتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی جو وہ کھانا کھا رہے ہیں ایونچولی مطلب آخری میں وہی گوشت ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اب وہ جو کھانا ہے وہ بہت بڑی بحث ہے, مطلب مان لیجئے پروسیسڈ میٹ بہت اچھا بھی ہے لیکن وہ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ ہماری صحت پہ اس کا ضرور اثر پڑتا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بہت زیادہ گرینز دیتے ہیں, یعنی جتنے بھی یہ ہمارے فارم کے اینیمل ہوتے ہیں یعنی گائے ہو گیا بکری ہو گئی یا باہری ممالک میں ٹرکی وغیرہ کا بھی بہت استعمال ہوتا ہے, تو یہ سیلولوز کھانے کے لیے ان کا جو ڈائجسٹو ٹریک ہوتا ہے وہ سیلولوز یعنی جو پلانٹ فائبر ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے پروفیسر ڈاکٹر عثمان خالق صاحب نے بہت ہی اچھا اور تفصیل سے گفتگو کی تھی پری بایوٹکس کے بارے میں, یعنی ہمارے جو انٹسٹائنل گٹ بیکٹیریاز ہیں, تو یہ جو پری بایوٹ یعنی یہ جو سیلولائڈ ہوتے ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی پری بایوٹک کا کام کرتے ہیں, یعنی ان کی غذا بھی ہیں اور ان کے گٹ کو صاف بھی رکھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو یا تو یہ گرینز کھلاتے ہیں یعنی ان کو اناج دیتے ہیں جو کہ ان کے گٹ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے, چلیے یہ تو پھر بھی کھانے کی چیز ہو گئی. اس کے علاوہ اب جیسے میں نے کہا کمرشلائزیشن ہو رہا ہے تو ان کو کیا دیتے ہیں, اسٹیرائڈس, یعنی وہ تیزی سے بڑھیں.
ٹھیک ہے,
اسٹیرائڈس یعنی گروتھ ہارمون. اب یہ آپ سوچیے کہ ان چیزوں پر پلے بڑھے ہوئے جو جانور ہیں وہ اگر ہم کھائیں گے تو ظاہر سے طور پہ ہمارے اندر بھی اسٹیرائڈس کے کچھ نہ کچھ اثرات آئیں گے. اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا سوڈیم نائٹرائٹ کا, یعنی جو کیمیکل ہوتا ہے جس سے گوشت کا سرخ رنگ برقرار رکھتے ہیں, تو وہ چیز فرٹیلائزر میں بھی دیتے ہیں تاکہ جو ایونچولی جو آخری میں گوشت حاصل ہو وہ بہت ہی شاندار ہو, اس کی کوالٹی دیکھنے میں اچھی ہو, وہ بھی بہت نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ اب جیسے میں نے کہا کہ کنفائنڈ اینیمل بریڈنگ فیکٹریز ہوتی ہیں یعنی چھوٹی سی جگہ پہ بہت زیادہ جانور رکھے جاتے ہیں تو وہ بیمار بھی بہت پڑتے ہیں, ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے انہیں اینٹی بایوٹکس بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو ہم آخری میں گوشت حاصل کر رہے ہیں اس میں کس قدر ایسی چیزیں ہیں جو ایکچولی ہمیں بالکل بھی نہیں لینی چاہیے, یعنی اس میں اینٹی بایوٹکس ہو گئے, اس میں گروتھ ہارمون یعنی اسٹیرائڈز ہو گئے, اس میں ایسی ان کے گٹ بیکٹیریا بالکل مطلب ہے نہیں, ان کو آپ سیلولائز سیلولوز دے نہیں رہے ہیں, آپ گرینز پہ ان کو پال رہے ہیں. तो किस कदर वो मतलब बिल्कुल भी अच्छा गोश्त जो मिलता है एंड में प्रोसेस्ड मीट में, वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होता जिसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आउटलेट्स में कैसा गोश्त मिलता है, बात ये है कि वो गोश्त आखिर किस क्वालिटी का है और वो कहाँ से आ रहा है।
सही डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि ये बात मानना थोड़ा सा आम लोगों के लिए सख्त है कि स्टीरॉइड मुर्गी को दिया जा रहा है, स्टीरॉइड बकरे को दिया जा रहा है, स्टीरॉइड गाय को दिया जा रहा है, तो वो हमारे तक कैसे पहुंच रहा है? इसके थोड़ा सा अगर इसकी दोबारा एक बार वजाहत कर दें, क्योंकि अक्सर ये बात मानी जाती है, कहते हैं कि जी गाय बकरी जो कुछ खा रही है वो हजम हो जाएगा और वो गोश्त में तब्दील हो जाएगा। अब ये बात आम शख्स के लिए समझना मुश्किल है, वो कहता है भाई जो जो भी खाए वो उसका अपना मसला है, हम तो गोश्त खा रहे हैं।
जी देखिए, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप सर्दियों में ऐसी ग़िज़ा खाइए जिससे जिस्म में हरारत बनी रहे। अब मैं लोगों से कहूँगी कि भाई आप खा रहे हैं वो तो हज़म हो गया, उससे जिस्म में हरारत कैसे बनी रहेगी? देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे जिस्म के सार मतलब एक और सारे ईच एंड एवरी सेल्स और टिश्यू में जाता है, यानी हमारे जिस्म जिस चीज़ से बना हुआ है उसमें जाके वो डिपॉजिट होता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन यानी गोश्त वगैरह पे पले बड़े होते हैं, उनके मसल अगर हम उसको रिसर्च करें तो वो दूसरी तरह होते हैं कंपेयर्ड, मतलब अगर उनका मुकाबला करें सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, तो उनका वो उतनी मस्कुलर बॉडी नहीं होती है। तो यानी जो कुछ भी अगर हम खा रहे हैं उसका असर हमारे जिस्म पे है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि अगर जानवर को स्टेरॉइड दिया जा रहा है, उनको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, तो उसका असर उनके जिस्म पे नहीं होगा? बिल्कुल होता है। उनके एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में स्टेरॉइड की मकदार चाहे कम ही क्यों ना हो, वो ज़रूर पहुंचती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक दिन जाएंगे और बाहर जाके प्रोसेस्ड मीट खा लिया आपने और आपको ख़तरनाक बीमारी हो गई, ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है। मैं आपको बता दूँ, हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे हमने बकरी का गोश्त खाया या मुर्गे का गोश्त खाया या हमने एक एप्पल खाया, तो उसका हमें सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है, इसे हम 10% लॉ भी बोलते हैं। तो वो जो 10% है वो हमें पूरी की पूरी मिलती है, 90% वेस्ट है, और उसी 10% का जो कुछ भी उसके अंदर है वो हमारे अंदर ज़रूर शामिल होता है। मैं आपको बताऊँ कि बहुत से प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत से ममालिक में अब फ़िश खाने के लिए रोका जाता है, क्योंकि फिशेस में जो मछलियाँ होती हैं वो अक्सर समुद्र या नदियों में मरकरी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उनके जिस्म में भी वो मरकरी दाखिल हो जाती है और उससे इंसान को मीनामाटा डिजीज़ कहते हैं, वो हो जाती है। और अगर डिजीज़ ना भी हो तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए वो इतनी इस कदर ख़तरनाक होती है कि वो उसका थोड़ा भी मकदार उनके फिटस यानी जो ग्रोइंग चाइल्ड है उनके रहम में, उसके लिए बेहद ख़तरनाक साबित होता है। तो जो भी मछलियाँ या पोल्ट्री है या जो भी फार्म एनिमल है, वो जो भी खाएंगे उसका असर बहरहाल हमारे जिस्म पर होगा।
सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है हमें छोटा सा एक वक्फा लेना, क्या ख्याल है?
बिल्कुल, वक्फा लेते हैं, थोड़ा सा जो है
ताज़ा दम होके आते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर जो है आपकी खिदमत द्वारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
सात बज के 13 मिनट हो रहे हैं और आप तेहरान स्टूडियो से हमारा प्रोग्राम मुलायजा फरमा रहे हैं और इस वक्त हमारा रابطہ दिल्ली स्टूडियो से हुआ है सहर आलमी नेटवर्क के। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। अतिया निशाद साहब, एक चीज़ जो पूछनी थी वो ये है कि आम हालात में लोग जो हैं उनको एक तो यानी जैसे खुर्रम ने कहा, वाकई समझाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई एक दफ़ा खा लिया, दो दफ़ा खा लिया, बस दो दफ़े के बाद फिर 10 दफ़ा 20 दफ़ा तक भी पहुँच जाता है, उसको भी ज़्यादा लोग नहीं मानते। रोका कैसे जाए लोगों को?
देखिए, सबसे पहले तो उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे जिस्म पे होता है, वैसे जानवर जो कुछ भी खाएंगे उसका असर जानवरों के जिस्म पे होगा। और जब आप उनका गोश्त हासिल करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको भी नुकसान करेगा। उसके अलावा ये बताना ज़रूरी है कि जैसे प्रोसेस्ड मीट की जैसे हम बात करते हैं या हम ऐसे आउटलेट्स, कॉमर्शियल आउटलेट्स की बात करते हैं जिस किस्म का मीट सर्व होता है, उनको ये समझाना ज़रूरी है कि जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि ये जला हुआ है या इसको खाएंगे तो फौरन ही बेहोश हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे जिस्म पे बहुत ही गहरा असर डालता है। यानी जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जैसे जो भी इनके ग्रिलिंग प्रोसीजर्स होते हैं या ये अक्सर फ्राइंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसमें इससे भी इसमें ऐसे केमिकल कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं जो बहुत कई तरीके के हमें खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। एक रिसर्च में जाहिर हुआ है कि अगर हम प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं, जो कि बहुत आम है आज की ज़िंदगी में, तो हमें कोलोरेक्टल, बल्कि मैं नाम भी बता दूँ रिसर्च का, ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने ये सर्च किया है कि 50% तक चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बड़ी आंत के कैंसर के। 17% तक सुनने में कम लग रहा है, लेकिन अगर हम उम्मीद तौर पे देखें तो बहुत बड़ा फिगर है। 17% तक चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे डायबिटिक होने पे होने के, क्योंकि ये हमारे, जैसे आपने कहा ना कि हमारे इंसुलिन के फंक्शन को कम कर देता है, यानी हमें अगर इंसुलिन सिक्रेट भी हो रही है तो उससे उसका असर हमारे जिस्म को पे नलिफाई करता है, यानी ख़त्म करता है। तो अगर लोगों के बीच में इस चीज़ के ये सारी चीज़ें लाई जाएं तो जाहिर से तौर पे वो इस चीज़ को समझेंगे, और कम से कम अपने बच्चों को तो इससे बहुत दूर रखेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसमें मुब्तला हो रहे हैं। मतलब हम तो एक बार अवॉइड कर भी देंगे कि हमें नहीं जाना है और बर्गर नहीं खाना है, चिकन या हमें नगेट्स नहीं खाना है, लेकिन बच्चों को रोकना बहुत ज़रूरी है और उनकी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके अलावा एक चीज़ और है ख़ास, वो ये कि अब ये चीज़ तो बिल्कुल आम है, आप इससे बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं कर सकते, मतलब महीने में एक बार या कभी भी तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए काउंटर अटैक करना, मतलब उसको दफाई उसका क्या मरहला है, वो ये है एंटीऑक्सीडेंट। मतलब हम अगर गोश्त या इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर भी रहे हैं या कुछ ऐसे है भी, तो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस्ड मीट हैं या ऐसे जो भी गोश्त हैं, इसमें कार्सिनोजेंस यानी ऐसे ऐसे केमिकल्स जिससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और ये एंटीऑक्सीडेंट्स इन कार्सिनोजेंस को स्केवेंज करते हैं, यानी मतलब उनको ख़त्म करते हैं, उनके इफेक्ट को काउंटर अटैक करते हैं।
ठीक, अच्छा अति निषाद साहब, एक सवाल यहाँ पूछूंगा, वक्त भी हमारा कम रह गया, कि क्या कुछ लोगों का ये सोचना है कि अगर गोश्त को अच्छी तरह पका लिया जाए तो उसमें जितने जरासीम और जिस जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, ये स्टीरॉयड्स वगैरह भी इस पर ख़त्म हो जाते हैं अगर अच्छी तरह पका लिया जाए उसको, अच्छी तरह जो है वो कर लिया जाए।
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि गोश्त को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे, आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसा केमिकल जिससे कैंसर होता है उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि एक तो गोश्त में वैसे ही फैट होता है, फैट की ये खासियत होती है कि जब वो बर्न होता है यानी जलता है, आप जिस कदर उसको पकाएंगे फैट उस कदर बर्न होता जाएगा, और वो हवा में पहले मुअल्लक होगा और खुद गोश्त पे वापस डिपॉजिट हो जाता है, और इसी से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं जो कि बेहद ख़तरनाक होते हैं, आप उसको उसी कदर बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, सेकेंडली क्या है कि अगर आपने प्रोसेस्ड मीट खरीदा यानी बड़े स्टोर में गए और वहाँ से पैक्ड और साफ चिकन और ये सब लेकर आए, तो उसमें नाइट्रोएमीन्स बन जाते हैं, यानी सोडियम नाइट्राइट से इन्हें प्रिजर्व किया जाता है, यानी इनको सुर्ख और खुशनुमा रंग देने के लिए सोडियम नाइट्राइट दिया जाता है, तो जब आप उनको और ओवर कुक करते हैं, ओवर हीट करते हैं, तो वो नाइट्रोएमीन्स बनाते हैं, यानी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्लस नाइट्रोएमीन्स वो और भी उसी कदर आप उसके नुकसान को बढ़ाते चले जाते हैं। बेहतरीन गोश्त पकाने का तरीका ये है कि उसको धीमी आँच में उसका सबसे पहले तो फैट, जितना विजिबल फैट है, दिखने वाला फैट है, उसको साफ करें, और बगैर तेल के गोश्त, दर हकीकत बगैर तेल के बन सकता है, कम से कम तेल में चीज़ें डाल के और उसको आहिस्ता से कुक करें ताकि वो बहुत ज़्यादा जले नहीं, उसको बर्न होने से बचाना है। और जहाँ तक स्टेरॉइड का सवाल है, तो ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप स्टेरॉइड के असर को किसी भी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है जो ग्रोथ हार्मोन है, यानी वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ है कोई जो हम निकाल दें, वो हमारे सारे सेल सारे टिश्यूज़ में जाके शामिल हो चुका है और उसका हिस्सा बन चुका है। आप उसे कुछ भी कर लेंगे वो नहीं निकलेगा, आप सिवाय नुकसानात को बढ़ाने के और कुछ नहीं करेंगे गोश्त को ओवरकुक करने के। और इस सबको काउंटर अटैक कर सकते हैं हम इस चीज़ों को बेहतर तरीके से पका के और थोड़ा सा नेचुरल तरीके से रहने की कोशिश करके।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतिया निषाद, बहरहाल बहुत ही बिलाखिर ये मौजू अपनी तकरीबन कह सकते हैं मंजिल तक पहुँच गया, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहरहाल 2-3 हफ्ते तक बहुत ही अच्छी तरह तफसील से हमारे नाज़रीन को बताया इसके बारे में।
बहुत शुक्रिया।
अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ थी, अभी हाल में ही बात हो रही थी किसी से कि वो कह रहे थे कि भाई चलें, ज़िंदगी हाल सूरत हाल तब्दील हो गई है। एक ज़माने में ये होता था कि आदमी शक्कर भी ज़्यादा लेता था,
ठीक है,
मीठे मीठे के
बिल्कुल
आदी होते
गोश्त
थे,
भी खाते
उसमें
थे,
सुनाए सेवैया में 10 गुना ज़्यादा शक्कर पड़ती थी।
बिल्कुल
लेकिन अब जो है उसमें वो होता था कि भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं या काम बहुत कर रहे हैं तो वो पूरा मुनासिब हो जाता था, बदन के लिए बिल्कुल ठीक था।
सही है,
अब जो है कंप्यूटर पर बैठे और बिल्कुल सब कुछ अपनी हालत ख़राब कर दी
बिल्कुल
हम लोगों ने, तो इसमें जो है ये नुकसान अगर हम लोग ख़ुद को पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो दूसरा मसला है, लेकिन अगर सेहत का ख्याल रखना चाह रहे हैं तो यकीन हम लोगों को तर्ज़ ज़िंदगी अपनी तब्दील
तब्दील कर,
करनी
देखिए दोनों
पड़ेगी।
तरफ गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक तरफ जो खाने की चीज़ें मिल रही हैं वो भी ख़राब हो गई हैं, दूसरा हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो गई।
बिल्कुल
तर्ज़ ज़िंदगी
बिल्कुल
की बात की तो मैं बताता चलूँ कि हफ्ते के दिन जो है इंशाल्लाह डॉक्टर जाफर रजी खान लाइफस्टाइल के बारे में, तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में हमारे साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। बहरहाल हसन, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हम इस
खत्म
दुआ के साथ
हो
जो है,
गया।
जी हमें बताया जा रहा है कि जी आप जो है प्रोग्राम को ख़त्म कर लें, उसके बाद जो है खूबसूरत सी जो है एक तराना अपने नाज़रीन को हम सुनाएंगे।
बिल्कुल चलते
जी
हैं, तो आप लोग वो देखिए और उसके बाद बहरहाल हम लोग सनीचर को आपकी खिदमत में
मैं
हाजिर
हाजिर
होंगे।
होंगे, मुझे और हसन जैदी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा
खुदा
हाफिज़।
हाफिज।